आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रिया सिंह है। आज हम आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 7, जिसका नाम है पर्यावरणीय प्रदेश, डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपसे दो पार्ट्स में चैप्टर का हाफ पोर्शन डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको समझाया कि हमारी पृथ्वी पर मुख्य कटिबंध कौन कौन से हैं, हम किस बेसिस पर इन कटिबंधों को कैटेगराइज करते हैं, या फिर कटिबंध करने का मापदंड क्या होता है। फिर मैंने आपको पर्यावरण का मतलब समझाया। इसके बाद पेज नंबर 51 पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक डायग्राम है। मैंने आपको डिटेल में समझाया कि वो डायग्राम क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसकी डिटेल्स क्या हैं। इसके बाद बच्चों, हमने सेम पेज पर जो कॉलम दिया है पिंक कलर के बॉक्स में, उन सारे टॉपिक्स को कवर किया। हमने देखा कि उष्ण कटिबंध क्या होता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। फिर हमने शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र को भी जाना कि इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसका विस्तार क्या है, और सेम पॉइंट्स हमने शीत कटिबंध के जाने। इसके बाद मैंने आपको बताया कि डू यू नो में हमें प्रदेश का डेफिनेशन दिया है। आप वो डू यू नो एक बार और देख लीजिएगा बच्चों। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पर्यावरणीय प्रदेश के बारे में, यानी कि क्लाइमेटिक बेसिस पर जो डिवीजन है सारे लैंडफॉर्म्स का या फिर सारे प्रदेशों का, हमने उसका एक पार्ट देखा था, यानी कि उच्च भूमि। मैंने आपको बताया था कि हम जब पहाड़ पर जैसे जैसे ऊंचा जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटने लगता है। पहाड़ पर कौन सी खेती होती है, वहाँ के लोगों के रहने का क्या ढंग है, सीढ़ीनुमा खेती हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये हमने आपसे पेज नंबर 52 में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे हमारे लैंडफॉर्म्स का पर्यावरणीय प्रदेश का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है निम्न भूमि। तो बच्चों, आप अपनी किताब का पेज नंबर 53 ओपन करिए। इसमें दिया गया टॉपिक निम्न भूमि की तरफ ध्यान लगाइए। मैं जैसे जैसे पढ़ती हूँ अपनी पेंसिल को वैसे वैसे वहाँ घुमाइए। तो इसमें लिखा है बच्चों, ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई कम होती है उसे निम्न भूमि कहा जाता है, जो अधिकांशतः समतल मैदान होते हैं। यहाँ चौड़ी नदियाँ मिलती हैं जो मध्यम गति से बहती हैं। यहीं बड़े बड़े लहलहाते खेत भी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ इतने अधिक खेत क्यों होते हैं? यह इसलिए क्योंकि मैदान की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अब आप सोचेंगे, मैदानों की भूमि इतनी उपजाऊ क्यों होती है? ये इसलिए क्योंकि जब नदियाँ पहाड़ों से बहकर नीचे आती हैं तो अपनी तीव्रता के कारण अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं और मैदानों में जमा कर देती हैं। पहाड़ों से उतरती हुई नदियाँ ही धीरे धीरे मिट्टी का जमाव करती हैं और समतल मैदानों का निर्माण करती हैं। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ का जन जीवन कृषि पर आश्रित होता है। यहाँ जनसंख्या सघन होती है। इसका उदाहरण हमारे देश में गंगा यमुना के मैदान हैं। बच्चों, इस टॉपिक में हमें प्लेन लैंडफॉर्म के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे देश का वो क्षेत्र जहाँ की भूमि, यहाँ का ज़मीन पूरा प्लेन होता है, वहाँ पर ऊंचाई बहुत कम होती है और इसी की वजह से वहाँ की भूमि नीचे होती है, उसको हम प्लेन मैदान भी कहते हैं। बच्चों, इसी क्षेत्र में चौड़ी चौड़ी नदियाँ मिलती हैं जो जिनकी स्पीड थोड़ी मीडियम होती है, यानी कि हमने हिली एरियाज़ में देखा था उच्च वाले भूमि में कि जो रिवर्स होती हैं उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है। यानी कि उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, लेकिन निम्न भूमि के क्षेत्रों में नदियों की जो गति होती है वो मध्यम होती है, न ही बहुत तेज ना ही बहुत धीमी। और यहाँ पर आपको बड़े बड़े लहलहाते हरे हरे खेत देखने को मिलते हैं। तो आपने सोचा है कि यहाँ इतने ज़्यादा खेत क्यों मिलते हैं? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि जो मैदान की मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आती हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों से जब वो तीव्र गति से यानी कि फुल स्पीड से आती हैं तो अपने साथ साथ मलवा लेकर के आती हैं। मलवा यानी कि उपजाऊ मिट्टी, और वो मिट्टी जब वो प्लेन एरिया में आती हैं और उनका फ्लो मीडियम होता है तो वो सारे मलबे को इसी क्षेत्र में उतार देती हैं, यानी कि छोड़ देती हैं। और इसी वजह से बच्चों ये जो ज़मीन होती है यहाँ के मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। हमें पता है कि इस मैदान में एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बाद में जानने को मिलेगा। और ये पहाड़ों से उतरती हुई जो नदियाँ होती हैं, ये सारी नदियाँ ही धीरे धीरे मिट्टी का जमाव करती हैं, कहाँ पर? प्लेन एरियाज़ में। और इसी उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ के कॉमन लोग यानी कि आम लोग जनरली कृषि पर आश्रित रहते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहते हैं। और ये पॉइंट हमने जब उच्च भूमि पढ़ा था बच्चों तो उसमें डिस्कस किया था कि वहाँ पर प्लेन एरिया नहीं मिलते और खेती भी बहुत कम होती है, जिसके कारण वहाँ के लोग पशुपालन करते हैं, पशुओं के खाल निकाल कर उससे ऊन बनाते हैं और व्यापार करते हैं। तो वहाँ के लोगों का जनजीवन पशुपालन पर आश्रित है, लेकिन निम्न भूमि जहाँ पर प्लेन एरिया है, समतल भूमि है, वहाँ का जनजीवन कृषि पर आश्रित होता है। और क्योंकि कृषि करना आसान होता है तो इस वजह से यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है, जिसे हम सघन जनसंख्या का क्षेत्र भी कहते हैं। और अगर बच्चों आपको इसका उदाहरण याद करना है तो वो है गंगा यमुना के मैदान। आपको तो ये बात पता ही होगी कि हमारे अतीत में जो भी बड़े बड़े साम्राज्य रहे हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, इन एरियाज़ में रहे हैं। वो इस वजह से बच्चों, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर सारी नेचुरल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एक पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये हुआ हमारा डिस्कशन निम्न भूमि पर। चलिए अब हम अपने प्रदेश का तीसरा भाग देखते हैं, यानी कि आर्द्र तथा शुष्क प्रदेश। तो आप सेम पेज यानी कि पेज नंबर 53 के ही थर्ड टॉपिक आर्द्र तथा शुष्क प्रदेश पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है, धरातलीय विभिन्नताओं के कारण हमारे पर्यावरण में विभिन्नता देखने को मिलती है। जलवायु भी पृथ्वी के पर्यावरण को विविध बनाती है, जैसे कि ऐसे स्थान जहाँ खूब वर्षा होती है और घने जंगल होते हैं, वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे अमेजन का वर्षावन। यहाँ जलवायु में उमस होती है, कुछ स्थान दलदली भी होते हैं। उसी प्रकार ऐसे स्थान भी हैं जहाँ वर्षा कम होती है और मौसम भी अत्यंत शुष्क होता है। यहाँ सदावाहिनी नदियाँ नहीं बहती और वनस्पति साल भर हरी भरी नहीं रहती। सामान्यतः इन्हें मरुस्थलीय क्षेत्र भी कहा जाता है। बच्चों, इस टॉपिक के नीचे आपको दो डायग्राम्स दिए हैं, आप उनको ध्यान से देखिए, जो कि पेज नंबर 53 पर है। एक डायग्राम में हमें आद्र क्षेत्र, यानी कि बच्चों बहुत ग्रीन दिखाया गया है। और आद्र का मतलब होता है वेट, यानी कि गीला, जहाँ पर बारिश होती है वो एरिया हमेशा गीला होता है। दूसरी तरफ हमें एक झोपड़ी दिखाई गई है और उस एरिया को शुष्क क्षेत्र कहते हैं, यानी कि जहाँ पर सूखा होता है और वहाँ पर बारिश कम होती है। तो हमें इस टॉपिक में यही दोनों डायग्राम्स को डिटेल में समझना है बच्चों। तो बच्चों, इसमें हमें ये बताया गया है कि जो हमें अर्थ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसके मेन दो फैक्टर्स हैं, यानी कि धरातलीय विभिन्नता और जलवायु, जिसे हम इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। यानी कि जिस रीजन में जैसा क्लाइमेट रहता है वहाँ का लैंड फॉर्म, वहाँ की लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसी होती है। बच्चों, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर तो घने जंगल भी होते हैं, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। और जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं और उन्हीं पेड़ पौधों के साथ साथ बहुत टाइप के जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इनकी बहुत डाइवर्सिटी होती है, जिनको हम इंग्लिश में फ्लोरा एंड फौना के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमेज़ॉन फॉरेस्ट। अमेज़ॉन फॉरेस्ट के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अमेज़ॉन फॉरेस्ट को हम अपनी अर्थ का लंग कहते हैं। लंग्स इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट है और यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अमेज़ॉन फॉरेस्ट से मिलता है। यहाँ जो क्लाइमेट होता है उस क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको भी पता होगा जहाँ पर ग्रीनरी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर रेस्पिरेशन अच्छा होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है हमेशा कूल रहता है और इसी वजह से वाटर साइकिल जो है वो अच्छे से काम कर पाता है। और इसी वजह से यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसके कारण जो उमस है यानी कि एयर की ह्यूमिडिटी वो भी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो नीचे का स्थान होता है वो दलदली होता है। और ऐसे भी कई सारी जगह होती हैं बच्चों जहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, यानी कि वर्षा बहुत कम होती है और वहाँ का जो मौसम होता है बहुत ड्राई होता है। और इसी ड्राइनेस की वजह से हमें हमेशा लोशन लगाना पड़ता है। राजस्थान इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जहाँ पर बच्चों ड्राई होता है वेदर, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ये तो बहुत नेचुरल सी बात है। वहाँ पर सदा वाहिनी नदियाँ बहती हैं, यानी कि हमेशा बारिश नहीं होती है, नदियाँ हमेशा नहीं बहती हैं, और जो वहाँ का फ्लोरा एंड फौना है वो हमेशा हरा भरा नहीं रहता, बल्कि सीज़न पर डिपेंड करता है। और जनरली हम इन रीजन्स को बच्चों डेजर्ट कहते हैं, हिंदी में मरुस्थल भी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों डायग्राम्स के डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप एक बार खुद सोचिए कि आपका क्षेत्र किस प्रदेश को अच्छे से डिफाइन करता है, यानी कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का मौसम आर्द्र है या शुष्क, वर्षा ज़्यादा होती है या कम होती है। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा थर्ड टॉपिक, आर्द्र और शुष्क प्रदेश। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है वन प्रदेश। अपना ध्यान पेज नंबर 53 पर रखिए बच्चों। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ, इसमें लिखा है, किसी विशेष भौगोलिक परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियों एवं घासों को सम्मिलित रूप से वहाँ की वनस्पति कहा जाता है, जबकि पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को वन क्षेत्र कहा जाता है। कभी आपने वन क्षेत्र देखे हैं? वन क्षेत्र में क्या होता है? पेड़ों के झुरमुट, जानवर,
कीट पतंगे आदि वन सिर्फ एक तरफ के नहीं होते, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहीं घने सदाबहार वन है तो कहीं ऐसे भी वन है जहाँ पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ जानवर रहते हैं, यहाँ पर कई मानव के समूह भी रहते हैं। इन्हें जनजाति कहा जाता है, पर यह बहुत दुख का विषय है कि हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन जंगलों को काटते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि ये जंगल न सिर्फ हमारी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर वातावरण को साफ रखते हैं, बल्कि ये इन आदिवासी जनजाति को आवास भी हैं। भूमध्य रेखीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी अमेरिका में वन्य क्षेत्र आज भी कायम हैं।
बच्चों, क्या आप सभी कभी जंगल में गए हैं, या आप में से कभी किसी ने जंगल सफारी किया हो? अगर किसी ने किया है तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको जंगल सफारी की जो व्यूज़ हैं, जंगल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, जंगल के प्रकार, हम वो सब डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों ने जंगल सफारी नहीं किया है या फिर कभी जंगल जाने का मौका नहीं मिला, तो आप भी चिंता मत करिए, हम इतने बढ़िया से डिस्कस करेंगे कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप कभी जंगल नहीं गए। तो बच्चों, चलिए हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जंगल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पैराग्राफ में वनस्पति की डेफिनेशन बताई गई है। तो बच्चों, किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन का जो प्लांट्स होता है, यानी कि वो एक स्पेशल वैरायटी होती है, और वो प्लांट्स की वैरायटीज़ और कहीं नहीं पाई जाती। हम उस क्षेत्र के पेड़ पौधों को या फिर झाड़ियों को और घासों को भी वनस्पति कहते हैं, यानी कि वो हर जगह नहीं पाई जाती, बल्कि उसका एक विशेष भौगोलिक परिवेश होता है, यानी कि जियोग्राफिक एरिया। और वो प्लांट्स भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वनस्पति का मतलब क्लियर हो गया होगा कि एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट्स या ट्रीज या फिर ग्रासेस, हम इन सबको वनस्पति में काउंट करते हैं, यानी कि वेजिटेशन में। और उसके बाद बच्चों, ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जो केवल पेड़ पौधों से, वहाँ की झाड़ियों से बहुत लंबे एरिया में ढका हुआ होता है, वहाँ पर हमें केवल पेड़ पौधे, घास, जंगली घास या फिर ऐसी सारी चीज़ें दिखती हैं, तो वो क्षेत्र कहलाता है वन क्षेत्र, यानी कि फॉरेस्ट कहलाता है। बच्चों, आप फॉरेस्ट को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसी प्लेस पर गए जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़, वो पेड़ आपके एरिया में पाए जाने वाले पेड़ों से बहुत डिफरेंट हैं अपीयरेंस वाइज। आपको कभी कभी उन पेड़ों पर कोई जंगली जानवर या जंगली गिलहरी दिख गई तो आपको डर भी लगेगा कि हम कौन सी जगह आ गए। लेकिन बच्चों, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर काफ़ी सारे आदि मानव रहते हैं। आपने मूवीज़ में, कोई फिल्म में तो मतलब देखा ही होगा कि जंगल कैसे होते हैं। वहाँ पर जो सन रेज होती हैं वो हार्डली ज़मीन को टच कर पाती हैं, हाँ, क्योंकि प्लांट्स इतने सारे होते हैं, ट्रीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि सन रेज को वो आने से रोक लेती हैं, यानी कि बीच में ब्रेक लगा देती हैं। तो अगर आप कभी घुसे भी तो ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ पे सनरेज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा होता है हमारा वन क्षेत्र। पेड़ों का जो झुरमुट होता है, जानवर होते हैं वहाँ पर, और बहुत सारे मतलब बहुत वैरायटी वैरायटी के कीट पतंग होते हैं, जो छोटी छोटी ऐसे वो तितलियाँ टाइप की उड़ती रहती हैं ना, वो उनकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। और बच्चों, आपको पता है ये फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वो भी कभी एक टाइप का नहीं रहता, क्योंकि फॉरेस्ट भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और वो भी आपके रहने वाले जो प्लेस होती हैं उन प्लेसेस की जैसे क्लाइमेट के ऊपर ही बेस्ड होता है। यानी कि मैंने पहले भी आपसे बताया है कि हम जब किसी प्लेस को डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे प्लेस से, तो वो उसका हम बेस रखते हैं क्लाइमेट को। तो वैसे ही हमारे फॉरेस्ट लैंड्स भी कभी एक जैसे नहीं होते हैं, वो भी हम क्लाइमेटिक रीजन वाइज उसको डिवाइड किए जाते हैं। कहीं पर बच्चों आपको बहुत घने सदाबहार वन मिलेंगे, इसका मतलब कि बहुत डीप फॉरेस्ट, यानी कि इतने डीप कि सन रेज बहुत मुश्किल से ही वो आपको दिख पाएंगे सन रेज। तो समझ लीजिए कि पेड़ों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा होगी। और सदाबहार का मतलब एवरग्रीन, यानी कि जो पेड़ हमेशा हरे रहते हैं, जिनका मौसम कभी भी मुरझाने वाला नहीं आता, और ऐसे वनों को ही हम सदाबहार वन कहते हैं। इसके बाद कई सारे ऐसे वन भी पाए जाते हैं जहाँ पर पतझड़ होता है, और पतझड़ के मौसम में बच्चों पत्ते झड़ जाते हैं, और अक्सर ऐसे पेड़ हमारे आसपास भी देखने को मिलते हैं। अगर आप वनों को आप इमेजिन करें बच्चों, तो आपको यही लगता होगा जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं उस टाइप के फॉरेस्ट को देख करके, कि वहाँ पर केवल जानवर रहते होंगे, भला वहाँ पर इंसान का रहना कैसे पॉसिबल है। लेकिन नहीं बच्चों, ऐसे जंगलों में बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स का ग्रुप रहता है, यानी कि मानव समूह वहाँ पर ऑलरेडी रहता है, जिसे हम जनजाति कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा बच्चों कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है, यानी कि जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है, वो भी मंकीज़ या फिर एप्स के फॉर्म में हुआ है। और मंकीज़ और एप्स तो बच्चों जंगलों में ही रहते हैं, तो बहुत पहले यानी कि एंशियंट टू एंशियंट टाइम में हम भी जंगल में ही रहा करते थे। वैसे ही इन घने जंगलों में वहाँ पर भी कबीला होता है, थोड़े अलग होते हैं वो लोग, उन लोगों का समूह होता है, उनका खुद का कल्चर होता है, खुद की सोसाइटी होती है, वो हम लोगों से कभी डिफरेंट होते हैं, तो कुछ उनके ट्रेडिशंस हम लोगों से काफ़ी मैच भी करते हैं। तो इसीलिए जो मानव समूह वहाँ पर रहते हैं बच्चों, हम इनको जनजाति कहते हैं। तो आप ये शब्द याद रखिएगा, जनजाति हम किसे कहते हैं? जंगलों में रहने वाले मानव समूह को हम जनजाति कहते हैं। लेकिन बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने स्वार्थ के लिए, यानी कि लालच में आकर के या फिर अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि ये फॉरेस्ट कटेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ने से बच्चों हमारी हवा पल्यूटेड होगी, और फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिससे कि हमारे क्लाइमेट में चेंज आएगा, और फिर कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब हमें ये धरती छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इन फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और केवल ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं आएगी बच्चों, एक और बहुत दुख की बात ये है कि जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, तो हम इसमें रह रहे जो जानवर होते हैं उनसे उनका घर छीन लेते हैं, जो मानव समूह यानी कि जनजातियाँ रहती हैं उनसे उनका समाज छीन लेते हैं, उनका परिवार छीन लेते हैं, उनके ट्रेडिशंस छीन लेते हैं, और अपनी कल्चरल हेरिटेज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो बच्चों, ये तो आपको पता चल गया होगा कि जंगल न सिर्फ हमारी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है, बल्कि ये काफ़ी लोगों का यानी बहुत सारे लोगों का घर भी प्रोवाइड करता है। आदिवासी जनजातियों को घर देता है, काफ़ी सारे जीव जंतु इनको भी घर प्रदान करता है। फिर बच्चों, इस पैराग्राफ के लास्ट में हमें ये जानकारी दी गई है कि जो मेडिटेरेनियन रीजन है, यानी कि भूमध्य रेखी अफ्रीका और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और फिर साउथ अमेरिका, इनमें आज भी बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट अवेलेबल हैं, यानी कि वन्य क्षेत्र आज भी कायम हैं। और हमें उम्मीद यही है कि हम अपनी लालच के कारण इन जंगलों को साफ न करें बल्कि और प्लांट्स लगाएं। तो ये हुआ हमारा टॉपिक वन, प्रदेश ख़त्म। चलिए हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। तो आप अपना ध्यान पेज नंबर 54 पर पिंक बॉक्स में लगाइए। इसमें लिखा है, आओ करके देखें। अपने आसपास में पाए जाने वाले वृक्षों की सूची बनाइए और उनसे हमें क्या क्या लाभ है लिखिए। तो बच्चों, आपको अपने आसपास एक सर्वे करना है। अपने फ्रेंड्स को आप अपने साथ ले सकते हैं और जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए। इसके बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प से उसकी जो बेनिफिट्स हैं उसको आप नोट डाउन करिए। फिर इससे बच्चों आपको भी पता चलेगा कि आपको प्लांट्स को हार्म नहीं करना है बल्कि इनको इनकी ग्रोथ में इनकी मदद करनी है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पेज नंबर 54 का फिफ्थ टॉपिक, घास के मैदान। अपनी पेंसिल्स रेडी रखिए। जैसे जैसे मैं रीड करूँगी अपनी पेंसिल्स को वहाँ वहाँ मूव करिएगा आप। पृथ्वी पर ऐसे स्थान भी हैं जहाँ वर्षा तो इतनी अधिक नहीं होती कि घने वन पनप सके, पर इतनी कम भी नहीं कि वहाँ सूखे मरुस्थल हों। ऐसे स्थानों पर दूर दूर तक घास ही घास नज़र आती है। कहीं कहीं ये हमारे घुटनों तक तो कहीं ये सिर्फ एड़ियों तक ऊंची होती है। इन फैले घास के मैदानों को चारागाहों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चारागाह ऐसे स्थान में जहां भेड़, बकरियां, गाय आदि पशु चराए जाते हैं। ये विस्तृत चारागाह और घास के मैदान अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय भूभागों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी में ऊंची ऊंची घास होती हैं। यूरोप एवं एशिया के स्टेपी मैदानों में छोटी घास पाई जाती है। तो बच्चों, हमें इस पैराग्राफ में कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रासेस के बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि वो क्षेत्र जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, उस क्षेत्र में प्लांट्स भी अच्छे नंबर में होते हैं, ग्रासेस भी अच्छी खासी होती हैं। लेकिन वो क्षेत्र बच्चों जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि वहाँ पर फॉरेस्ट आ सके या फिर बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट्स की ग्रोथ हो सके, लेकिन इतनी कम भी नहीं होती है कि वहाँ पर सूखा पड़ जाए या फिर डेजर्ट बन जाए। तो बच्चों, ऐसे प्लेसेस पर दूर दूर तक अगर आप नज़र डालेंगे तो केवल ग्रासेस होती हैं, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा भी नहीं होती लेकिन बहुत कम भी नहीं होती। इसकी वजह से वहाँ पर ग्रासेस उग जाती हैं और उसका भी अलग ही लैंडफॉर्म होता है। कहीं कहीं बच्चों ये जो घास होती हैं, यानी कि जो ग्रासेस होती हैं, इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये आपकी नीज को टच करती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन ग्रासेस का साइज छोटा भी होता है और इतना छोटा कि वो केवल आपकी एड़ियों तक ही पहुंच पाती हैं। और बच्चों, जैसा कि नेचर ने हमें बनाया है, हमारे साथ साथ और भी जीव जंतु हैं जिनको इन घासों की ज़रूरत होती है। इस नेचर के द्वारा बनाई गई या फिर हमें दी गई कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, यानी कि जो भी यहाँ पर नेचुरल है वो सब हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आपको क्या लगता है, ग्रासेस हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होंगी? बिल्कुल, ग्रासेस को बच्चों एनिमल्स खाते हैं। जो छोटे छोटे पशु होते हैं उनको ग्रासेस चाहिए होती हैं। तो ये जो ग्रासेस होती हैं, कुछ बड़ी यानी कि जो घुटनों तक पहुंच जाती हैं, कुछ छोटी जो केवल एड़ियों तक पहुंचती हैं, इनको चारागाहों के रूप में यूज़ किया जाता है। यानी कि जो हम गाय, भैंस या फिर और भी जानवर, ऊँट,
ये सारे जानवरों को जब हम चराते हैं, खाना खिलाते हैं, तो ये हमारी तरह पका हुआ भोजन नहीं खाते, बल्कि ये घास ही खाते हैं। इनको घास में ही न्यूट्रिशन मिलता है। और इसमें चरागाहों में वो ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर भेड़, बकरियाँ, गाय और भी ऐसे कई सारे जानवर मिलते हैं। बच्चों, ये सब जो घास का मैदान है बड़े बड़े, वो मेनली शीतोष्ण कटिबंधीय भूभाग में पाया जाता है, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाया जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। बिल्कुल सही। तो इस रीजन में ये सारे ग्रासेस पाई जाती हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ में दो इम्पॉर्टेंट ग्रासेस का मेंशन किया गया है। वो ग्रासेस कौन कौन सी हैं? तो बच्चों, पहली ग्रास है प्रायरी। प्रायरी घास उत्तरी अमेरिका में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। प्रायरी घास बहुत ऊंची ऊंची होती है और ये भोजन होती है बहुत सारे पशुओं की, बहुत सारे जानवरों की। इसके बाद हमें दूसरी घास बताई गई है जिसे हम स्टेपी कहते हैं। और बच्चों, स्टेपी घास हमें यूरोप और एशिया में मिलती है और ये घास प्रेयरी घास के कंपैरिजन में साइज़ में छोटी होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत बेनिफिशियल होती है उन सारे जानवरों की लाइफ को सपोर्ट करने में जो कि ग्रासेस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो आज हमारा समय ख़त्म होता है और हम घास के मैदान टॉपिक पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि पेज नंबर 54 का टॉपिक मरुप्रदेश, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार ये टॉपिक ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।